ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जल्द सूचना देने की होड़बाजी में मिथ्या सूचना प्रवाह हो सकने के प्रति सजग रहने का राष्ट्रपति ने पत्रकारों से किया आग्रह। मस्तिष्क घात के निशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है तैयारी। गेटा मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भौतिक पूर्वाधार निर्माण है अंतिम चरण में। मध्य सरकार हुलाकी राजमार्ग से जुड़े 44 स्थानीय तहों के युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाने के लिए इसी आर्थिक वर्ष से संचालित करेगी विशेष अभियान। और अमेरिका में भीषण बर्फीली तूफान के कारण 7 राज्यों में संकटकाल हुआ घोषित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि सूचना प्राप्ति और संप्रेषण सहज होने के साथ ही जल्द से जल्द सूचना देने की होड़बाजी में मिथ्या सूचना प्रवाह हो सकने को लेकर पत्रकारों को सचेत होना होगा। नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मिथ्या सूचना समाज को भ्रमित कर सकती है, इस बात को लेकर आम संचार माध्यमों को सचेत रहना चाहिए। सरकार मस्तिष्क घात के निशुल्क इलाज का प्रबंधन करने की तैयारी कर रही है। आज कांति बाल अस्पताल के 63वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कांति बाल अस्पताल में बाल कैंसर के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा चुकी है और अब मस्तिष्क घात के इलाज के लिए मंत्रालय कार्ययोजना बना रहा है। ये बताते हुए कि कांति बाल अस्पताल में भौतिक पूर्वाधार और जनशक्ति का अभाव है, मंत्री पौडेल ने मंत्रालय की ओर से भरसक सहयोग करने की प्रतिबद्धता भी जताई। देश के एकमात्र सरकारी केंद्रीय तथा रेफरल बाल अस्पताल के रूप में रहे कांति बाल अस्पताल की स्थापना विक्रम संवत 2019-22 यानी 6 जनवरी 1963 को हुई थी। बता दें कि अस्पताल ने आर्थिक वर्ष 2080-81 में 1,80,000 बच्चों का इलाज किया था। नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी की आज की बैठक में केंद्रीय सदस्यों का अपने विचार रखने का क्रम जारी रहा। ललितपुर के चैसल स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा कल पेश किए गए राजनीतिक प्रतिवेदन पर केंद्रीय सदस्यों ने अपनी अपनी धारणा रखी। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि पार्टी को आधारभूत तह से मजबूत बनाने और जनता के साथ सुमधुर संबंध बनाने के लिए वैचारिक और सांगठनिक अभियान को निरंतर वार्ड केंद्रित बनाना चाहिए। बैठक में केंद्रीय सदस्यों का धारणा रखने का क्रम पूरा न होने के कारण प्रतिवेदन पर उठे सवालों के जवाब अध्यक्ष ओली कल की बैठक में देंगे। ये बात एमाले के केंद्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ने बताई। नेकपा माओवादी केंद्र की जारी केंद्रीय समिति की आज की बैठक में विचार रखने वाले सदस्यों ने स्पष्ट विचार और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं की जीवन शैली पारदर्शी होनी चाहिए और अध्यक्ष सहित सभी नेता कार्यकर्ताओं को श्रम और उत्पादन से जुड़ना चाहिए। बैठक के बाद संचारकर्मियों के साथ बातचीत में माओवादी केंद्र के प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जनता के बीच जाने के हिसाब से अभियान चलाने की तैयारी माओवादी केंद्र ने की है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि कंचनपुर के शुक्ला फाटा की जमीन पर भारतीय नागरिकों द्वारा खेतीपाती किए जाने के मुद्दे का तत्काल समाधान करने के लिए सरकार ने कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र की नेपाली भूमि भारतीय नागरिकों के उपभोग करने के विषय में सरकार का गंभीर ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश की जमीन और सीमा की रक्षा करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए कूटनीतिक विचार विमर्श हुए हैं। केरला स्थित राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजना गेटा मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के भौतिक पूर्वाधार निर्माण के काम लगभग पूरे हो गए हैं। अब कुछ नीतिगत बाधाएं सुलझने के बाद विश्वविद्यालय संचालन में आएगा, ये जानकारी परियोजना के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। मध्य प्रदेश में युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार हुलाकी राजमार्ग से जुड़ी 44 बालिकाओं में युवाओं को इस बुरी लत से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के सचिव उद्धव प्रसाद रिजाल ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स की लत में पड़ने से रोककर उन्हें रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ाने के लिए इसी आर्थिक वर्ष से अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत से सटी सीमा पर ड्रग्स की तस्करी पर नियंत्रण के लिए सीमावर्ती 19 स्थानीय तहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत लागू पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए स्कूल और समुदाय स्तर पर बातचीत और संचार किया जाएगा। अत्यधिक ठंड के साथ साथ काठमांडू घाटी का वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज काठमांडू घाटी का वायु प्रदूषण 250 AQI है। वातावरणविद भूषण तुलाधर के मुताबिक गर्मियों की तुलना में ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण की संभावना अधिक होती है। AQI के मुताबिक आज काठमांडू घाटी दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कुछ ही महीनों में बाजुरा के दुर्गम मानी जाने वाली हिमाली गांवपालिका अंतर्गत पहले की बिछिया गावी सके 803 घरों में बिजली पहुंचने वाली है। हिमाली गांवपालिका 2 में तकरीबन 14 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत में 1 किलोवाट क्षमता की नातीखोला लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के 682 परिवारों और वार्ड नंबर 5 स्थित क्यूडी गांव के 120 घरों में कुछ महीनों के भीतर बिजली पहुंच जाएगी। ये बात गांवपालिका के अध्यक्ष गोविंद बहादुर मल्ल ने बताई। स्थानीय राजबहादुर थापा ने बताया कि वर्षों से अंधेरे में रह रहे गांवों के लोग बिजली की जुड़ने की तिथि नजदीक आने से बेहद खुश हैं। सड़क संजाल तक पहुंच न होने के कारण विछिया में बिजली ले जाने के लिए हुमला के जीवाना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान पहुंचाए गए थे। वैदेशिक रोजगार में आकर्षक वेतन का लालच देकर विभिन्न देशों में भेजने के वादे के साथ ठगी करने के अभियोग में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय टेको की पुलिस टोली ने सरलाही कोड़ैता नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के 28 वर्षीय राकेश कुमार रावत, काभरे पलांचोक की रोशी गांवपालिका वार्ड नंबर 11 के 33 वर्षीय दूधराज थिंक और दांग तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 5 की 34 वर्षीय प्रभा श्रेष्ठ को गिरफ्तार किया है। आवश्यक अनुसंधान तथा कार्यवाही के लिए उन्हें वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल भेजा गया है। चितवन जिले के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल के स्वरूप को बदलकर और तेज गति से तेज आवाज कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली 63 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने नियंत्रण में लिया है। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन ने अलग अलग समय पर उन मोटरसाइकिलों को नियंत्रण में लिया और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। आमतौर पर 60 डेसिबल तक की आवाज को सामान्य माना जाता है, लेकिन पाया गया है कि ऐसी मोटरसाइकिलें 120 से 190 डेसिबल तक की आवाज निकालती हैं। ऐसा पाया गया है कि इससे मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान के कारण करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और कई प्रांतों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैनसास, अरकनसा, न्यूजर्सी और मिसूरी समेत कई राज्यों ने इमरजेंसी घोषित की है। इन राज्यों के लगभग सभी हाईवे पर बर्फ जमा होने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सड़क मार्ग का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी और न्यूनतम तापमान का बीते एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया है। कैनसास और मिसूरी अभी सबसे अधिक प्रभावित है। यहां कुछ इलाकों में रविवार को दोपहर के बाद से 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के मध्य से लेकर पूर्वी तट के लगभग 30 अमेरिकी राज्यों में हालात गंभीर होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि खराब मौसम का कारण ध्रुवीय भंवर यानी आर्कटिक के चारों ओर ठंडी हवाओं का बहाव है। वाशिंगटन डीसी और फिलाडेल्फिया समेत कई बड़े शहरों के भारी बर्फबारी की चपेट में आने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार से खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत के छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बीजापुर के कुटरू बेंद्रे मार्ग पर संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के 9 जवानों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह हमला आईईडी विस्फोट के जरिए किया गया था। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर की स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की टीम माओवादी ऑपरेशन से लौट रही थी, तभी यह हमला हुआ। पुलिस के अनुसार आज दोपहर जवानों की टीम थाना कुटरू के ग्राम अम्बेली के पास से गुजर रही थी, उसी समय सुरक्षा बलों का एक वाहन आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवानों और एक वाहन चालक की मौत हो गई। कुछ जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल्द सूचना देने की होड़बाजी में मिथ्या सूचना प्रवाह हो सकने के प्रति सजग रहने का राष्ट्रपति ने पत्रकारों से किया आग्रह। मस्तिष्क घात के निशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है तैयारी। गेटा मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का भौतिक पूर्वाधार निर्माण है अंतिम चरण में। मध्य सरकार हुलाकी राजमार्ग से जुड़े 44 स्थानीय तहों के युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाने के लिए इसी आर्थिक वर्ष से संचालित करेगी विशेष अभियान। और अमेरिका में भीषण बर्फीली तूफान के कारण 7 राज्यों में संकट काल हुआ घोषित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।